तरह हुआ क्या कि मेरी बारी आ गई थी अमेरिका में वो ट्रांसप्लांट की। वो जब डायलिसिस शुरू होती है तो सबको वो होता है कि वो नाम डाल सकते हैं हॉस्पिटल में डायलिसिस ट्रांसप्लांट के लिए, तो कोई चार साल लगते हैं कि उनकी बारी आती है।
अच्छा,
तो मेरे चार साल हो गए तो मेरी बारी आई, तो मैं जब हॉस्पिटल गया तो उन्होंने जो सर्जन आए मेरा पेट टच किया तो कहा कि सॉरी आई कैन नॉट डू योर सर्जरी बिकॉज योर किडनीज आर टू बिग टू लार्ज। इतना लार्ज हो गया, वो पॉलीसिस्टिक किडनीज डिजीज है ना, वो इसमें यही होता है कि किडनीज बड़े होते जाते हैं, इतने बड़े हो गए थे कि पेट फूला हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि हम आपका ट्रांसप्लांट करें आपको दोबारा वो अपॉइंटमेंट लेके हम आपका किडनीज निकालेंगे, उस वो सर्जरी होगी पहले।
अच्छा,
जब आपका वो सब हील हो जाएगा तो फिर हम आपको दोबारा उसमें डाल देंगे, नाम आपका टॉप में होगा तो फिर इंशाल्लाह आपकी ट्रांसप्लांट होगी। तो अब वो किडनीज दोनों निकाल लिए, उसके बाद भी मेरा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से सारा हील हो गया एवरीथिंग। अब मेरे नाम दोबारा वो टॉप द लिस्ट में होगा तो इंशाल्लाह 3-4 महीने में ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए।
अच्छा, तो बस हमारी दुआ है कि जल्दी से मैच आपको मिल जाए और आप बिल्कुल ठीक ठाक, वैसे भी माशाल्लाह सुब्दी आप ठीक ठाक हैं। और
मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, शो कर रहा हूँ, ऐसे कुछ
बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारी ये दुआ है कि जो आपका एक है कि मुकम्मल सेहत याब होना, जिसके लिए आप यहाँ अमरीका रुके। और पता है, जब मैंने एक आपका एक इंटरव्यू सुना था, इमरान के साथ आप बात कर रहे थे, बड़ा मेरे दिल पर असर हुआ था आपके उस इंटरव्यू का। और आपने वो इंटरव्यू दिया, फिर आपने हमारे प्रोग्राम में आके अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। तो चूंकि ये प्रोग्राम मेरी कहानी है, तो लीजिए हम आपकी कहानी भी सुनते हैं और वो इंटरव्यू भी सुनते हैं साथ साथ, और फिर हम आगे आपसे बातें करेंगे। तो अंजुम, अगर आप हमें वीडियो और ऑडियो दोनों आलमगीर के सुनवाए।
मैंने समझा था कि मैं बहुत अच्छा एक अच्छा इंसान हूँ, मैं शरीफ आदमी हूँ, मैंने किसी को दुखाता नहीं हूँ, मैं तो मैं समझा मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि मैं अच्छा नहीं हूँ, कि मैंने मिलियंस फैंस को दुखाया कि बिकॉज मैं एक शॉपिंग मॉल में गया तो एक दो खातून आए, तो एक खातून के तो आंसू निकल रहे थे, आप हमें छोड़ के चले गए। दैट ट्रिप changed absolutely everything. Again, I'm a selfish person. I didn't think of them. Ab main baki zindagi jitni hai main jaan laga dunga to come back on the screen for them. Kuch na chaha sanam,
sab kuch mujhe mil gaya. आपके बिल्कुल फीलिंग्स
इसलिए था कि मैंने 20 साल पाकिस्तान में यू नो एक्टिव और उसमें उरूज में था जब मैं परफॉर्म किया और गाने टीवी में, तो मेरे इतने जो फॉलोअर्स थे, फैंस थे, वो जो मैंने मेरे दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गया कि मैंने जान के तो नहीं किया ये, कि मैं जब खुद अपना सोचा कि मैं बस मुझे और नहीं करना है, बस और टीवी में नहीं आना है, मैं अमेरिका में जो मैं अपना सुकून से जिंदगी गुजारूंगा आखिरी लास्ट पार्ट। तो लेकिन जब मैं एक ही विजिट किया था पाकिस्तान, हम मुझे बुलाया था सिर्फ एक अवार्ड प्रोग्राम में, तो वहां जो लोगों ने जिस तरीके से मुझे रिस्पॉन्ड दिया और वो किचा वो तो कभी भी नहीं चाहते थे मैं चला जाऊं, और जो मैंने ये सब देखा तो फिर मुझे एकदम से एहसास हुआ कि मैं सिर्फ अपना ही जिंदगी अपना ही सोचा, इन लोगों का नहीं सोचा, जो मिलियन पाकिस्तानी जो मेरे मुझे नहीं चाहते थे कि मैं चला जाऊं, तो मैंने इनका नहीं सोचा। तो अब मैंने सोचा कि मेरी बीमारी है जो भी है, मैं ये जिस तरह जितना कर सकता हूँ मैं करूँगा। अब मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान इंशाल्लाह फर्स्ट वीक नवंबर में, तो वहाँ बहुत टीवी चैनल्स में प्रोग्राम करना है, ये करना, ये सारा जो मैं अब जान लड़ा दूंगा।
तो
मैंने एक्चुअली पहले रिसर्च करने के लिए किया था कि वहाँ अगर ट्रांसप्लांट हो तो कैसा होगा, नहीं होगा, वो सारे मैंने मालूमात की। तो वहाँ ये है कि अगर एक दफा हो जाता है, लेकिन अगर उसमें कोई अगर इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, तो वहां फिर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो वो बड़ा उससे मैं डरता हूं। तो इसलिए कि मैंने यहाँ जो मैंने नाम एनलिस्ट किया अमेरिका में, तो वो बहुत 2-3 साल पहले मैंने एनलिस्ट किया था, तो मेरी बारी अब आने वाली है 1.5 साल में।
अच्छा,
तो मैंने सोचा कि यहाँ अगर हो जाता है, अगर कुछ खराब हो जाता है, कुछ होते है, तो इन लोग रिस्पॉन्सिबल लेते 3 साल तक, कि जब तक बिल्कुल मैं 3 साल ठीक ना हो जाऊं तब तक उन लोग सपोर्ट करते रहेंगे मुझे। तो ये चीज और कहीं नहीं मिलेगा। और वहां अगर कर लिया तो यहाँ जो मेरे मेडिकेयर वो इंश्योरेंस है जो 80% तो इन लोग पे करते हैं, तो मुझे 20% पे करना होता है।
तो आलमगीर, आप भी उस लम्हे में पहुंच गए होंगे जब आपने ये इंटरव्यू दिया था और बात की थी।
आपने मुझे आंसू निकाल दिए।
मेरे तो हमेशा जब मैं आपका ये इंटरव्यू सुनती हूँ ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसलिए भी कि आप, मतलब आपसे जो लोगों का प्यार है ना, वो सिर्फ आपके म्यूजिक की वजह से नहीं है, आपकी शख्सियत की वजह से भी। आप हमेशा से बहुत ही हम्बल, बहुत ही एक जो मासूमियत होती है ना एक फनकार में, वो आप में है। और मैं
बहुत बाद में मुझे पता चला
कि मैं कितना मासूम हूँ मगर मुझे ये खुशी है कि लड़की आपको इतनी अच्छी मिली, शैला जो है, कि आपकी भोले भालेपन से कोई फायदा नहीं उठाया। अम्मा ने जो पसंद की थी वो अच्छी पसंद की थी आपके लिए, है ना?
बहुत अच्छा,
बिल्कुल अच्छा। मैं ये नहीं चाहती कि मैं आपको आपकी कहानी के लिए थकाऊं, क्योंकि ये प्रोग्राम है मेरी कहानी।
आप कह सकते हैं, अब तो आप पता, सबको, दुनिया को पता चल गया मेरी कहानी पे फिल्म बन रही है।
नहीं, वो तो फिल्म बन रही है, लेकिन आपकी कहानी शुरू कैसे हुई, ये आपने हमारे प्रोग्राम में बताया था, और वही कहानी हम आपको सुनवाते हैं। और सामीन, आप सुनिए, और फिर आप, अभी हमारे साथ कॉलर्स मौजूद हैं, मुरीद खान हमारे पुराने जो है कॉलर, लेकिन ये कि पहले हम आलमगीर से उनकी कहानी सुनते हैं और फिर चलते हैं आगे प्रोग्राम की जाने में। जी अंजुम, अब सुनाइए आलमगीर की कहानी।
मेरा जो है ना, ये म्यूजिक जो पैशन था वो जो आज भी है। मैं गिटार प्ले, मुझे शौक था, मैं जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था। तो फिर मैं गिटार बजा के गाता था, इंग्लिश गाने गाता था, बीटल्स के, एल्विस प्रेस्ली के। तो फिर जब मैं कराची आया, मैं वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, मैं कराची आया तो कराची में सोयलाना के बच्चों के प्रोग्राम होते थे, वहाँ मैं गिटार बजाता था। तो फिर वहाँ जब सोहेल भाई बड़ा देर से आते थे कभी कभी, तो बच्चे वेट करते थे, तो मैं गिटार लेके जब बैठता था तो सारे बच्चे आके कहते थे आलम भाई हमें गाना सुनाए।
अच्छा,
तो मैं गिटार बजा के उनको गाना सुनाता था। करते करते वो जिया मोहिद्दीन का शो होता था उस जमाने में, कि वो स्टेज शो पहली दफा स्टार्ट किया जिया मोहिद्दीन ने पाकिस्तान में। तो फिर वहाँ मुझे बुलाया लोगों ने, वही बच्चों ने और वो प्रोड्यूसर्स ने बात करते थे कि ये आलम जो है गिटार बजा के गाता है बड़ा अच्छा, आपके प्रोग्राम के लिए तो बहुत अच्छा है। उन्होंने बुलाया, कहते कि कोई सुनाओ गाना। तो मैंने उनको इंग्लिश गाना सुनाया, तो कहते कि नहीं तुम स्पेनिश गाना गा सकते हो। तो मैंने कहा मैं कुछ भी, कोई भी जबान मुझे दे दें मैं। तो उन्होंने मुझे एक गाना ला के दिया, क्वांताना मेरा, और वही मेरा पहला गाना बन गया था, वही उसी में मैंने गाया था। तो वहां से फिर सिलसिला शुरू हो गया, और पैशन से वो प्रोफेशन हो गया। जब देखा ना था कभी हमने ये समा गाया था 1976 में, फिर लाहौर टेलीविजन से, तो फिर वो देखा ना था जो इतने मशहूर हो गए थे कि फिर उस वक्त मुझे जहन में ख्याल आया कि शायद दिस इज व्हाट आई हैव टू डू इन माय करियर, दिस इज माय करियर, दिस इज माय लाइफ, दिस इज व्हाट इज माय प्रोफेशन, एवरीथिंग। वो इस तरह वो फिर स्टोरी तो आगे फिर गाने पे गा। सारे मैंने 17 जबान में गाया आज तक।
अच्छा, कौन कौन सी जबानों में?
एक तो हमारा जो प्रोविंशियल बलोची, पश्तो और पंजाबी तो है ही है। इसके अलावा भी मैंने कोरियन, इटालियन, स्पेनिश, अफगानी, पर्शियन, अरबिक, जापानीज, इस तरह श्रीलंका। क्योंकि मैं जहाँ भी गया हूँ, पाकिस्तान ने तो मुझे बहुत जगह भेजे हैं टू यू फेस्टिवल्स में रिप्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान को। तो उस दौरान उस टूर्स में, जैसा मैं जापान गया तो वहाँ मैंने एक जापानीज गाना सुना दिया। तो जापानीज गाना सुना दिया तो जापानीज लोग बिल्कुल ताज्जुब हो गए और आके कहने लगे कि आप हमारे लिए एक प्रोग्राम करेंगे, वो जापानीज में बात करना शुरू कर दी। मैं आपको जापानीज सुना दूँ थोड़ा सा गाना?
मैं तो जीते नानी मोमिये जो खाना शिकुते में ओ आखेरवा कोयानी मुखाओ मिची उरी ओ कानी मिये रुमोनो वानशी खुदा के चीरू सादा मेनो होशी ताचियो समेते से यो
ये अबाउट 15 इयर्स इसके ये सुबारू टाइटल गाने का टाइटल सुबारू इज अ स्टार तो वो कहते कि मुझे वो स्टार पहुंचना है बहुत डीप फिलोसॉफी है पोएट्री है जैसा हमारा गजलों में होता है और वेरी ओल्ड कल्चर है उनका उनके फोक गाने में मुझे याद है उनके तो मुझे बहुत गाने याद है जापानीज के ये मैं चाहता था मैं खुद ही कहूँ इस बात को कि मैं इतना शौक जो मेरा इतना डोमिनेटिंग है कि चाहे मैंने कितने भी मैंने गाने गाए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मशहूर हुए ये वो लेकिन जो मेरा जो पैशन है म्यूजिक के लिए जो मेरा जो दिल है मेरा इतना लव आई लव म्यूजिक इतना ज्यादा कि चाहे मैं टीवी में आऊँ ना आऊँ मैं अपना वो अपना शौक पूरा करते रहता हूँ घर पे
जो कहे दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले राहें हमें अब जो कहे राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले दुनिया हमें अब जो कहे दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले राहें हमें अब जो कहे राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले देखा ना था कभी हमने ये समाज सजा दो तेरे प्यार ने किया सोचा ना था
मुझे ये वाला जो आपने इतने वर्जन है ना इसके आपने जो चलाया ये ओरिजिनल नहीं है अब क्या मुझे किस तरह पता चला कि वो जब जादू वाला वर्ड आया ना तो समझ उस जमाने में जाहिर हम पाकिस्तान बहुत कंजर्वेटिव थे तो मैं बहुत दफा बैन हो चुका हूँ इसलिए मैं एकदम से मैंने जब मॉडर्न म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक लाया पॉप म्यूजिक लाया तो मुझे बहुत नेगेटिव मुझे इफेक्ट मिल रहे थे और फ्रॉम टीवी के हेडक्वार्टर से यहाँ से वहां से तो उन्होंने कह दिया कि नहीं ये गाना नहीं चल सकता टीवी में इसलिए कि वो ऐसा नशा है नशा को निकालो जादू करके गाया फिर उसको जो कहते कहने अब आलमगीर पैंट शर्ट नहीं पहन सकता है वो मॉडर्न है वो तो ठीक है उसको शलवार कमीज पहनाओ फिर शलवार कमीज पहना उसमें ख्याल रखना गया तो वो भी हिट हो गया फिर उनको समझ नहीं आ रहा ये तो फिर भी हिट हो जाता है तो उन लोग मुझे एक्चुअली चाह रहे थे कि इसको बंद करो इसको रोको
ये लड़का बिगाड़ रहा है पूरे काम को
वो रोक ही नहीं सकते थे कि वो फिर भी हिट हो रहा है सलवार कमीज पहन के भी हिट हो जाता है इसको करें क्या
अच्छा आलमगीर अब हमारे साथ एक साहबजादे ही मैं कहूंगी और वो आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं अदील है हमारे साथ वैंकूवर कनाडा से जी अदील अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम सलाम कैसे
हैं बिल्कुल ठीक ठाक आपके चहेते आर्टिस्ट हमारे साथ हैं आलमगीर मैं पढ़ रही थी आपका ये जो गाना आपने रिकॉर्ड किया कह देना आपको
कह देना को कितना सॉरी क्वेश्चन रिपीट करेंगे
कितने हिट्स हुए इनके इस गाने पर अब तक
जो यूट्यूब के हिट्स हैं वो तो आई थिंक 150 क्रॉस कर चुके हैं लेकिन फेसबुक पे मेरे ख्याल में 65,000 दफा शेयर हुआ है और ऑनलाइन जो है आई थिंक इट्स अ मैसिव हिट इसके अलावा बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है कि सारे टीवी स्टेशन पाकिस्तान में 6 या 7 वो एक ऐसा गाना चलाएं जो कि किसी टेलीविजन सीरीज से मुंसलिक हो
समझ लेना
सांसों में
बहुत खूब कैसे लगा आपको आलमगीर अभी आप सुन रहे थे इसको?
पुराने मैंने जो इसको बहुत अच्छा सजाया आपने.
अच्छा सुनिए आलमगीर आपने क्योंकि कई साल पहले का इंटरव्यू है जब गाना बिल्कुल रिकॉर्ड किया था अदील ने उस वक्त. तो अब तक कितना पॉपुलर हुआ कितने शेयर?
मैं कह रहा था अभी वो अदील बता रहा था कि वो 65,000 यूट्यूब में तो 800,000
तक पहुंच जाएगा बहुत जल्द मेरा ख्याल है. सर
मिलियन हो जाएगा
इंशाल्लाह. बहुत ही अच्छा. अच्छा मैं कर रही थी नोट और आपने मुझे याद है कि रेडियो में जब पहले बात हो रही थी आपसे तो कुछ तो कही है प्रोग्राम में आपसे तो आपने बताया था कि इसमें जो म्यूजिक जिस तरह आपने किया है कि इसमें भी फ्यूजन है जो इस गाने का म्यूजिक है. तो थोड़ा सा बताइए ये जो जबानों का आपका शौक है अभी आपने बलोची का आपका हमने एक झलक दी और ये भी कह दूं कि लोग नाराज हो जाएंगे अब आपको पंजाबी भी सुनाना पड़ेगा पश्तो भी और उर्दू आपने सुना दिया है पश्तो पंजाबी. हाँ दो जबाने आपको और सुनानी पड़ेंगी अभी.
अच्छा.
जी तो थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा सुना दीजिए हमें उसके बाद.
ताई दिन न जवानी नल चल दी उठाई दिन न जवानी नल चल दी कुर्ती मल मल दी अथरी तेरी जवानी कुड़िए तेरे वस नारंदी ओ कतरी पुरने ना 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 ना. और फिर दूसरा कोई कौन सा आपने कहा?
दूसरा मैंने कहा पश्तो और फिर सिंधी हो जमालो. मुझे याद है कि आपको याद था हो जमालो सिंधी में.
हाँ वो पश्तो में सुना दूँ आपको.
जी जरूर.
கட்டிப்பா சர்த்த கருத வினாத பராஷ்பதா பபாதாஷ்பதா பபாதனா கட்டிப்பா சர்த்த கருத வினாத பராஷ்பதா பபாயா பாஷ்பதா நனா.
அச்சா ஓர் அப் ரஹ கி சிந்தி
ஹோ ஜமாலோ ஹோ ஜமாலோ
ये चलाकी है, इसको कहते चलिए अब, क्योंकि मुझे भी याद नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं आपको अगर गलत बता दूंगी तो सुनने वाले खफा हो जाएंगे।
तो पहले तो मुझे आप थोड़ा वार्न कर देते तो मैं थोड़ा याद कर लेता, एकदम से आपने पूछा
मुझे
ज़हन में एक दो,
मुझे ऐसे ही अचानक पूछने का शौक है सवाल। तो अच्छा, ये आपने सुना होगा ना कुरतुल ऐन की है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो उनके दिमाग में आता है वो लिखती जाती हैं। तो मेरे भी जो दिमाग में जैसे जो ख्याल आते हैं मैं बोलती जाती हूँ। तो अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा, अब आप हमें बताइए, जो अलबेला राय बड़ी जबरदस्त फिल्म आप पे बन रही है और फवाद खान जो है वो उसके आलमगीर होंगे, फवाद खान क्यों?
ज़ाहिर है वो मेरे से भी डिस्कस करते रहे, वो जो प्रोडक्शंस जिन लोग कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, फवाद खान इसलिए, एक तो कि वो जो मेरी लाइफ स्टोरी है
जी,
वो कोई भी सुनेगा ना, तो सपोज किसी एक्टर को कहेगा कि आपको करना है, वो जब स्टोरी सुनेगा तो वो डर जाएगा, इसलिए कि इतना मुश्किल है वो, इसलिए कि उसमें इतना डेप्थ है कि वो डीप एक्टिंग करना, डिफरेंट यू नो के कभी रोना कभी हंसना कभी क्या है उसके अंदर, कभी टॉर्चर हो रहा हूँ मैं, कभी कुछ यू नो खुशी, हर चीज उसके अंदर है। मतलब है कि एक तो ये जो रियल लाइफ स्टोरी है तो उसको ये फवाद इज अ वेरी गुड एक्टर, फैंटास्टिक एक्टर, लेकिन सिर्फ एक्टर होने से नहीं चलेगा, जिसको म्यूजिक ना आता हो, जिसको म्यूजिक का रिदम ना पता हो, वो मेरे सारे गाने जो मेरे हिट गाने 8-10 गाने होंगे जो उसको उसको स्टेज पे वो परफॉर्म करेगा, वो जैसा आलमगीर जैसा परफॉर्म करता था वैसे उसको करना है, वो सारे चीज जो है ना वो सिर्फ वो कर सकता है जिसको म्यूजिक का पता हो
जी।
ये फवाद खान पहले शुरू ही किया था एक्टिंग से, पहले उसका बैंड था, वो गिटार बजाता था, वो गाता था।
अच्छा।
तो इससे आइडिया था और कोई चीज नहीं हो सकता जिसको म्यूजिक भी आता है और इतना अच्छा एक्टर भी हो।
बहुत अच्छे एक्टर हैं और आजकल तो बहुत मसरूफ हैं, तो वक्त आपकी फिल्म के लिए निकाल रहे हैं और इनका आना जाना भी रहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अच्छा, तो कौन सा जिंदगी का कौन सा हिस्सा है जो आप समझते हैं बहुत मुश्किल होगा? आपने कहा ना कि एक बहुत मुश्किल किरदार है ये।
हाँ बिल्कुल, हाँ बहुत।
तो कौन सा हिस्सा है जिंदगी का जिसमें आप समझते हैं किसी भी एक्टर को बहुत मुश्किल पेश आ सकती है?
इतनी सारी चीजें हैं कि जैसा जब मैं कराची आया तो मेरा सारा प्लान था कि मेरा अपना एक वो कजन के घर रहना है, उनके घर रहना है और वहीं मुझे कुछ महीनों में अमेरिका चला जाना है, इसलिए मैं वहां गया था वो पढ़ाई को कंटिन्यू जो है। तो मैं जब पहुंचा वहां, अब सोचें मैं कराची में किसी को भी नहीं जानता हूँ, मैं ढाका से आया हूँ।
अच्छा।
हाँ, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, सिर्फ मेरे कजन को जानता हूँ। मैं उनका एड्रेस पहुंचा हूँ, देखा मैं दरवाजा पे लॉक है।
अच्छा।
अब मैं नेबर से पूछा कि इन लोग कहाँ कहीं बाहर गए, मैं कहते ये तो बांग्लादेश चले गए। अब मैं अकेला कराची में, मैं किसी को नहीं जानता हूँ।
हाँ।
सोचे यहां से मैं चलते चलते पैर के, मैंने अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मतलब कि मेरे पास जितने भी वो रकम थे वो भी खत्म। किसी तरीके से तो मैं पहुंचा था वहां, तो चलते चलते मैं वो पार्क नजर आया, झील पार्क, मैं वहां जाके बैठा, वहां मैं सो गया रात को।
अच्छा।
फिर वो नेक्स्ट डे मैं निकला, मैंने कहा कोई जॉब तो करना पड़ेगा, कोई रेस्टोरेंट में कोई बेरर का जॉब हो, कुछ भी हो, तो मुझे खाना भी तो है, मतलब उससे पहले, और मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ कि मेरे पास जितने भी थोड़ा सा रकम थे वो भी तो किसी मेरे एक दो जो मेरे साथ कोई फ्लाई करके आए थे, जो प्लेन में बैठे हुए थे हम दोनों, वो खा गए मेरे, वो मतलब लंबी वो डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं जब जॉब करने जाता हूँ कोई ढूंढता हूँ कि नहीं मिल रहा है, तीसरा दिन मुझे मिला है और ये तीन दिन मैं झील पार्क में सो रहा हूँ।
शुक्र करें कि आज का कराची नहीं था।
फिर जब मुझे मिला एक रेस्टोरेंट वाले, बल्कि मैं सुसी को कहा, मैंने कहा देखें आपका इतना एक अच्छा लॉन है साइड में आपका होटल के साइड में, यहाँ कुर्सी मेज रखें, मैं कोने में बैठ के गिटार बजाऊंगा, गाना गाऊंगा, मेरा पास गिटार था।
अच्छा।
तो कहते हैं कि आप मुझे जो भी मतलब मुआवजा दीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको ऐसा करूंगा कि आपको डिनर दूंगा और उसके बाद जो पैसे का रकम कितना काम है सो नहीं ले रहा हूँ।
आप खुश
हैं डिनर?
अच्छा।
मुझे सिर्फ वो ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
सही।
तीसरा दिन भूखा, फिर मैं परफॉर्म करता हूँ, वो वैसे ही भूखा, तीसरा दिन भूखा, और मैं दो घंटा मैंने गिटार बजा के परफॉर्म किया तो डिनर मिला. कैन यू बिलीव दिस?
आलमगीर, आपने कुछ तीन दिन तक, ये चीज मैं मिस कर गई थी शुरू में कि आपने खाया ही नहीं तीन दिन तक कुछ.
दो दिन ना, ये तीसरा दिन में जो आई हैड माय डिनर.
कौन सा होटल था जहाँ पे आपने शुरू किया?
ये ग्लोब होटल.
अच्छा.
इतना इंटरेस्ट, यहाँ से जो स्टोरी होती है ना वो सारा मैं खुद अपने आप को, अपना स्टोरी को, अपनी जो सारी जिंदगी की जो स्टोरी है उसको मैं खुद ही फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये आलमगीर कर क्या रहा है, इसका साथ हो क्या रहा है और क्या होगा, व्हाट इज द फ्यूचर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एम आई गोइंग टू डाई, एम आई गोइंग टू, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू नो, ये इसी तरह चलता रहा मैं.
अच्छा आलमगीर, इससे पहले कि आगे जाएं आपकी कहानी में, आलमगीर
जब ये फिल्म बन जाएगा ना, अब जब देख, अब आपको याद है कि जब ये लॉन्च हुआ था तो फवाद खान ने क्या कहा था कि जब मैंने मुझे स्टोरी सुनी मैं
जी,
तो कहते कि मेरी फट गई. इसलिए इतनी मुश्किल मैं ये करेगा कौन, इतना डेप्थ स्टोरी इस स्टोरी में, इतना डेप्थ है, और वो जो एक्टर को जो वो सारा कुछ करना होगा रियल लाइफ को फिर एक्टिंग करके करना होगा.
सही.
तो वो इतना मुश्किल चीज है वो, बिकॉज जो कोई एक स्टोरी बनता है जो उसको जब कोई हीरो करता है वो तो खुद ही उसको मैन्यूवर करता है, लेकिन वो मैन्यूवर नहीं कर सकेगा, उसको वो ही करना होगा जो रियल स्टोरी में है.
बिल्कुल. अच्छा आलमगीर, एक सवाल ले लें हम अपने कॉलर का, उसके बाद आगे चलते हैं आपकी कहानी में. मियाँ वाली से बुखारी साहब हमारे साथ हैं. जी बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम.
अस्सलाम वालेकुम
जी.
वालेकुम सलाम.
पूरा नाम क्या है बुखारी साहब आपका?
फयाज बुखारी.
अच्छा, तो चलिए आप बात कीजिए, हमें पता है
बेचैन. आलमगीर साहब, हम आपको बचपन से सुन रहे हैं
जी,
और आप हमारी दिमाग में समाये हुए हैं. हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको सदका पाक रसूल का और उसकी अहले बैत का, आले रसूल का, आपको मुकम्मल सेहत याब करे
इंशाल्लाह.
और अक्सर जब मैं आपका वो सॉन्ग सुनता हूँ ना, शाम से पहले आना, तो मैं अक्सर, यकीन करें मुझे बहुत अजीब सा वो नगमा आपका वो गीत लगता है, और मैं अक्सर आपके लिए यकीन करें दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको.
शुक्रिया, थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आपकी आप लोगों की दुआओं वजह से मैं आज बिल्कुल टिका हुआ हूँ इंशाल्लाह.
और हमारी हर वक्त दुआएं आपके साथ हैं. बहुत खुशी हो रही है कि आपकी आवाज़ सुन रहे हैं हम, आपके आज भी उसी तरह परस्तार हैं.
ओ थैंक यू.
इन्होंने तो कमाल कर
दिया. भी दुआ है कि जो वॉइस ऑफ अमेरिका के जो हमारे हस्तियां बैठी हुई, अल्लाह ताला इनको भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, के ये भी चुन चुन कर सितारे इकट्ठे करते हैं.
बस ये इनकी मोहब्बत है आना हमारे प्रोग्राम में. मैं तो हमेशा बहुत शुक्रगुजार होती हूँ आलमगीर साहब वक्त निकाला पहले, जब भी हमने कभी इनको बुलाया, क्योंकि ये बहुत मोहब्बत करते हैं अपने सुनने वालों से. ये हमेशा जब भी कनेक्ट होने का कोई मौका होता है तो जाने नहीं देते उस मौके को. अच्छा, तो आप थे कितने साल के पहले? तो आप इनका अगर गुनगुना दें, शाम से पहले आना, इतनी मोहब्बत करने वाले आपके ये कॉलर थे.
शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना.
बहुत खूब, और सबकी दुआ है कि पाकिस्तान आप लौट के, आप जा भी चुके हैं अभी बीच में, और दोबारा से जाएं, शाम से बहुत पहले आप वहां पहुंचे. अच्छा शाकिर शमीम इस्लामाबाद से. जी शाकिर, अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम जी मैडम, क्या हाल है?
मैं ठीक ठाक हूँ, बहुत दिन बाद आप आए, कैसे?
माशाल्लाह, तो हमारे लिए बहुत बड़ा आसाफा है. हमारी दुआ है अल्लाह ताला इनको जल्द से एहतियात करे.
आमीन.
कायम और दायम रहे
इंशाल्लाह.
तो लेटेस्ट अगर कोई गाना गाया तो वो अगर सुना दे.
हाँ, ये तो खुद भी अपना एक स्टूडियो, ये बहुत ही एक्टिव है. खुशी की बात ये है कि आलमगीर आप,
लेटेस्ट कोई अगर है तो अगर
जी जी जरूर जी आलमगीर.
हाँ हाँ जरूर. मैं अभी मेरे एक्चुअली कुछ गाने ऐसे थे जो चले नहीं, या एक दफा चला और उसके बाद वो फिर वो कभी भी सुनाई नहीं दी, ऐसा एक गाने, कुछ कुछ गाने जो मैंने उसको दोबारा रिकॉर्ड किया पाकिस्तान में नए म्यूजिक के साथ, बहुत अच्छा लगा मुझे.
अच्छा.
तो उसमें से एक सुनाता हूँ.
जी.
देखते ही देखते हमें प्यार हुआ, जिंदगी में ये पहली बार हुआ. कैसे हुआ फूलों की दुनिया में, आओ तुम कह दो प्यार के गीतों में, सज गई फूलों से बहार. कह दो जरा सारे जहां में हमारी कहानी, सुन ले जहां ये सारी बातें तेरी जुबानी. मान लो कहना आओ ना, इन सपनों को मैं सच्चा बना दूंगा. ये स्लो, शुरू स्लो होती है, फिर उसके बाद बीट आता है, फिर वो फास्ट हो जाता है ये गाना.
बहुत खूब. अच्छा, ये जो आपके गाने के बोल सुनते सुनते मुझे ध्यान आया कि आलमगीर आप इस कदर मकबूल थे और लड़कियां इतनी फिदा होती थी आप पर, और शादी हुई आपकी अरेंज, तो प्यार व्यार कभी हुआ नहीं सचमुच आपको?
अब ये मैं तो जारी, जब वो फिल्म बन रही है मेरी लाइफ स्टोरी पे, जब उन्होंने सब पूछा मेरे सारे पूरे लाइफ स्टोरी, तो मेरी सारी तो पोल खुल गई.
अच्छा.
जो मैं छुपा के रखा हुआ था वो भी निकल गई. वो ये कि मैं साउथ अफ्रीका, मेरा एक टूर था वो शादी से भी पहले, तो मैंने तो बता दिया था शैला को
जी
कि ऐसा हुआ था जब मैं साउथ अफ्रीका गया था. तो वो साउथ अफ्रीका में किसी लड़की से मेरी वो इन्फेक्चुएशन कह रही थी. आई वाज ओनली 15 साल का था, तो उस 15 साल में जो होता है वो आई डोंट नो, वो तो वो लव है वो
इन्फेक्चुएशन है
वो क्या है, बट वो एक जाहिर हुआ था.
अच्छा, बस वही. और उसके बाद शादी अम्मी ने कर दी आपकी. तो अच्छा, आप जब कराची आए थे तो आप कितने साल के थे जब आप उतरे?
अब 14 साल का.
14 साल के.
हाँ.
मैं इमेजिन कर सकती हूँ. और बहुत अम्मा के लाडला बेटा और अकेला आ गया और यहाँ पे.
हाँ,
बड़ी हिम्मत, किस्मत आपकी माशाल्लाह.
जब देखा था ना घर का, तो उस वक्त जब और नेबर ने जब कहा कि वो तो चले गए बांग्लादेश, तो उस वक्त जो मेरा चेहरा, ये मेरा शक्ल और मेरा जो फीलिंग्स थे ना, वो जो है ना, मैं देखूंगा कि जैसा फवाद ने किस तरह किया है. मैं देखना चाहूंगा कि उसने उसने जब उसने कहा कि मैं आपको डिनर आपको मिलेगा और पेमेंट के बाद में कितना कहा, मुझे सुनाई नहीं, मुझे सुना भी नहीं मैंने वो, इसलिए कि वो जो डिनर जो कहा वो मेरा सर में धम 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 करके बजता रहा कि डिनर डिनर डिनर.
बिल्कुल. अच्छा चलिए, हम आपको एक थोड़ी सी सरप्राइज हम भी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि आप ढाका से आए थे तो आपका बंगाली एक गीत है जो आपने खुद ही प्रोड्यूस किया हुआ है, तो वो हम सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को.
2.5 मिलियन हो गया है यूट्यूब में वो लगाना.
अच्छा, बंगाली जो गीत है आपका जसीम. अच्छा, तो चलिए वो सुनते हैं और उसके बाद हम खालिद, मैं नाम ले दी मैंने खालिद साहब का, लेकिन खालिद हमीद साहब भी मौजूद हैं, उनसे
मुलाकात.
तो अंजुम, अगर आप गीत सुनवा दें पहले बंगाली का.
अमर हार काला और नाम रे, हाई लालो किरण
चाहते ओ दिक बांका है तार चाहते ओ दिक बांका सारे दिसी प्राण रे दुरंतो बोर पासे
خوبصورت گانا تھا خالد, اور یہ ہماری سرپرائز عالمگیر صاحب موجود ہیں آپ کے سامنے. خالد صاحب,
اچھا خالد بھائی کیسے ہیں؟
سرپرائز عالمگیر.
خالد حمید صاحب جو ہیں بہت محبت سے آپ کو ہم سب ہی یاد کرتے ہیں, اور خالد صاحب قصے بھی سناتے ہیں ہمیں, اور ہم سب کا یہ خیال ہے کہ آپ چونکہ اتنے نیک ہیں اسی لیے آپ بڑے نہیں ہوئے, مطلب آپ ابھی تک معصوم سے ہیں ویسے جیسے.
بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. عالمگیر ایک بہت ہی سچا پیارا معصوم سا انسان ہے, بھولا بھالا. میں نے انہیں 70 کی دہائی میں پہلی دفعہ ٹیلی ویژن چکلالا میں پاکستان راولپنڈی کا جو اسٹیشن تھا اس پہ ان کو دیکھا تھا, اور یہ اس وقت بھی وہ البیلا راہی گا رہے ہوتے تھے, اور شہزاد خلیل اور ان کے ساتھ یہ ان کا ایک گروپ تھا, اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ عالمگیر کو کوئی ادھر ادھر کوئی فضول ایسی بات ہو یا کوئی اسکینڈل ہو یا کہیں اپنے گھوم رہے ہیں, بلکہ ان کا سارا وقت جو تھا نا وہ اپنے فن پہ, اپنے گانے پہ, اس پہ توجہ ان کی رہتی تھی, اور مست ایک مست سا انسان, بالکل سچا فنکار جیسے ہوتا ہے اپنی دنیا میں گھوم.
سوچیں ذرا جس شخص نے ہیرو اس لیے بن کے نہ دیا, ان کو آفرز بھی ہوئی,
بہت
میوزک پسند تھا بس,
گٹار ہاتھ میں اور اپنے گا رہے ہیں اور اپنے ریہرسل کر رہے ہیں اور گانے ریکارڈ کروا رہے ہیں. اور آج سے کوئی ایک دو سال پہلے جب ہم نے یہاں, میرے ایک دوست ہیں خالد عمر, انہوں نے ان کے لیے ایک فنکشن کیا, تو اس میں بھی میں نے دیکھا کہ وہی عالمگیر مجھے نظر آیا.
بالکل,
20-30 سال پہلے میں نے دیکھا تھا, اور اسی پیار سے, اسی محبت سے, اور اسی جذبے سے اس شخص نے گانے گائے اور اسٹیج پہ. حالانکہ ڈاکٹرز نے ان کو منع بھی کیا ہوا تھا کہ جی آپ زیادہ اچھل کود نہ کریں زیادہ, لیکن ماشاءاللہ اتنی انرجی ہے, اتنا اس شخص میں جذبہ ہے. اور
اچھا خالد, اچھا آپ نے کہی اچھل کود, انجم ہم نے ایک ان کا کلپ نکالا ہوا ہے چھوٹا سا معین اختر کے ساتھ, بہت ہی مزے کا ہے وہ اور بہت مختصر سا ہے, تو اگر انجم تیار ہوں اور ہم وہ سنوا دیں, پتہ نہیں آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا.
ہاں بہت پرانی, میرا خیال ہے TV20 کا ایک,
جی ہاں کسی اس میں, بالکل. تو چلیے ہم وہ سنواتے ہیں. اچھا پھر یہ بھی سنیں گے ان سے کہ انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی تھی, میں نے کہا آپ نے کیوں ہیرو نہیں بنے, کہنا مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میرے گانے پہ کسی اور کی شکل دکھا دیں, میں اگر گاؤں گا شکل بھی اپنی دکھاؤں گا میں.
بالکل صحیح.
تو چلیے پہلے وہ کلپ سنتے ہیں, اس کے بعد
একদম ঠিকঠাক কি ভুলি গেছে সমঝ মে নি আতা
হ্যাঁ বিলকুল আলমগীর গানা গানে মে জিতনি ورزش আপ করতে হ্যাঁ ইতনি ورزش পাকিস্তান কা কোই পহলওয়ান ভি নি করতা হোগা অর ফির ভি জান আপকি এসি হে
সুবহ 6:30 বজে কুছ 15 সাল হোগে মে ভাগতা হু 3-4 মিল
সুবহ 7:30 বজে 3-4 মিল
6 বজে
জাহির হে ইনসান কিসি ওয়াক্ত ভি উস পে বুরা ওয়াক্ত আ সকতা হে নাহি ایک بات یہ خواتین حضرات,
اچھا اس کے بعد بلکہ قصہ انہوں نے سنایا تھا کہ یہ پتہ نہیں کون سا گانا تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا عالمگیر وہ کون سا گانا تھا.
نام میرے خیال میں تو اس میں کہا تھا کہ وہ درخت پہ چڑھ گیا تھا عالمگیر, وہ سچ تھا, بالکل سچ
واقعی صحیح تھا,
اور وہ خود اس پروگرام میں وہ ایم سی تھا.
اور ایک ہمیں اپنے خالد حمید کی جھلک بھی دیکھی تھی منی سی, اس میں وہ بھی بیٹھے تھے. اچھا سنیے تو وہ قصہ سنائیے, کیسے درخت پہ چڑھے تھے آپ.
وہ ہوا کیا کہ وہ یہ ملیر کینٹ میں پروگرام تھا, یہ آرمی آفیسرز کے جو میس ہوتے ہیں ان کے ہر سال ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے.
اچھا
اس میں میں گیا تھا تو وہ جو انہوں نے جو اسٹیج بنایا تھا وہ اسٹیج بالکل اسٹیج کے کونے پہ وہ درخت لگا ہوا تھا, وہ درخت بہت بڑا درخت تھا. تو میں ایک دم سے اسی وقت میرا گاتے گاتے دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما, گاتے گاتے میں درخت پہ چڑھ گیا.
اچھا
مائک تو وہ کارڈلیس مائکروفون ہوتے تھے تو میں تو درخت پہ چڑھ گیا, وہاں سے گا رہا ہوں بالکل اوپر درخت کے اوپر, سب لوگ اوپر دیکھ رہے ہیں درخت پہ. تو وہاں سے وہ شاخ ٹوٹی اور میں گرا نیچے.
اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب ایوارڈ کے پروگرام میں آئے تو بیساکھیوں پر آئے,
بیساکھی میں پہنچا میں ایوارڈ پروگرام.
زبردست بھائی. اچھا تو چلیے ہم دو کالرز کو لے لیں اپنے, بہت دیر سے منتظر ہیں. محمد شفیع صاحب ہیں اور حمد اللہ صاحب ہیں. محمد شفیع صاحب, محمد شفیع آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟
السلام علیکم. جی
جی وعلیکم السلام, بڑا لمبا انتظار کیا آپ نے, کیسے ہیں؟
ایک تو میں سب سے پہلے ایک تو اردو وی او اے کے پروگرام کو تو آج آپ لوگوں نے 8 چاند لگا دی.
اچھا
ٹھیک ہے جی, کیونکہ 4 چاند تو پہلے تھے, ابھی 4 چاند کا اضافہ اس لیے ہو گیا کہ خالد طبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود.
بالکل خالد صاحب کا کیا کہنا.
ہاں جی خالد صاحب کا تو میں وہ نہیں بھولے ہیں جب ٹی وی کے اسکرین پہ ہمیں نظر آتے تھے, اور عالمگیر صاحب کا ہم وہ گانا نہیں بھولے کہ میں نے تمہاری گاگل سے کبھی پانی پیا.
بالکل بہت پیارا گیت تھا. تو کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ ان سے شفیع صاحب؟
جی ایک نہیں, میری بات بھی ختم نہیں ہوئے.
اچھا اچھا معاف کیجیے.
ہاں جی آج میرے شاپ پہ میرے دکان پہ بندے آئے تھے اور آپ کا شکریہ ادا کر رہے تھے وہ پروگرام کی توسط سے. انہوں نے کہا جی یہ پیغام آپ نے ہمارا دینا ہے شہناز عزیز صاحب کو, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو چیئر پرسن ہے ماروی میمن, اس کو آپ پروگرام پہ لائیں, اور یہ کمیونٹی کی ریکویسٹ ہے آپ سے اور میری, مطلب ایک بتاؤ رہے امانت انہوں نے یہ بات مجھے سونپا تھا جو کہ آج ہی یہ میری بات ہو. اور
جی جی تو کیا کیا, اچھا تو کیوں بلائیں ان کو؟
اس لیے بلایا کہ یہاں پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو یہاں پہ جو سروے ہے جو پیسے ہیں وہ غریبوں کو نہیں مل رہے ہیں, اور اس میں بڑے بڑے لوگ جاگیردار لوگ جن کی گاڑیاں ہیں, جو ٹھیکیدار ہیں, جو افسران ہیں, 50,000-80,000-1.5 لاکھ روپیہ جو تنخواہ لیتے ہیں وہ لوگ لیتے ہیں, غریب جو ہے اس ان چیزوں سے محروم ہے, تاکہ ہم اس سے سوالات کر سکیں, ان سے پوچھ سکیں.
بالکل بات شفیع صاحب, میں کئی کہانیاں ہم نے ایسی کی اور جس میں سب سے ایک جو علامتی کہانی یہ پورے سسٹم کی ہے وہ فلک شیر کی کہانی تھی. خود نابینا ہے, گھر میں 7 افراد نابینا ہے, اور جب انویسٹیگیشن ہوئی خالد صاحب یہ بے نظیر سپورٹ پروگرام کے لیے ان کی انکم کی, تو انہوں نے کہا نہیں یہ ڈیزرو نہیں کرتے جو امداد ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے گھر اپنا ہے, ایک غریبانہ سا گھر ان کا اپنا ہے. تو یہ واقعی اس چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, میں ضرور آپ کی فرمائش پوری کروں گی, لیکن اس صورت میں اگر کوئی کہانی ایسی ہوئی جو سپورٹ پروگرام سے متعلق ہو. اچھا دوسرے ہمارے ساتھ ہیں راجہ زاہد محمود صاحب, بہت دن بعد آئے, السلام علیکم راجہ صاحب.
وعلیکم السلام جناب. السلام علیکم. جی
جی وعلیکم السلام. بلکہ میں پتہ آپ کو یاد کر رہی تھی, ہم نے بیپسی سدھوا کا پروگرام کیا تھا, پتا نہیں آپ نے سنا یا نہیں, بہت پرانا پروگرام تھا, 4-5 سال پرانا, ہم نے ایف ایم کے لیے وہ میں بھیج رہی تھی, تو آپ نے اتنے اچھے سوال پوچھے تھے اور میں نے کہا پتہ نہیں آپ کہاں غائب ہو گئے.
جی ہم کو مصروفیات ایسی ہوگی, کوئی تعلیم کے سلسلے میں میں نہ حاضر ہو سکا.
اچھا
تو میں معذرت چاہوں گا اپنے ویور سے, سننے والوں سے, سب چاہنے والے ہیں, آپ لوگوں کی بڑی محبت ہے. میں خالد حمید صاحب کو بھی سلام کہنا چاہوں گا اور عالمگیر صاحب کو بھی. جب پی ٹی وی ہوتا تھا تو اس وقت, جی جب پی ٹی وی کی ایک ہی اسکرین نظر آتی تھی تو اس وقت خالد حمید صاحب کو حفظ پڑھنے کا انداز ہمیں آج بھی وہ نہیں بھولا, اور 2-3 چہرے ہمیں یاد ہیں جن میں عالمگیر صاحب ہیں, خالد حمید صاحب ہیں, محمد علی شیخی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ستارے ہیں हम जब बच्चे थे तो उस वक्त से सुनते
अच्छा, हैं। अच्छा सुनिए, ठीक है, बिल्कुल हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, क्योंकि खालिद साहब को अब तैयारी करनी है अपनी अगले शो की, तो वो जाना चाहते हैं। तो चलिए आप कुछ कह दीजिए हमारे।
मैं बस यही कहूँगा कि मुझे आलमगीर की सेहत की बहुत फिक्र रहती है और मैं बहुत दुआगो भी रहता हूँ, और बेशुमार मतलब प्रस्तार हैं आलमगीर के जो उनके लिए दुआ करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला उनको सेहत होगी। और मैं ने अभी जब लास्ट टाइम मिला था आलमगीर से, तो मैंने इनकी सीडी ऑटोग्राफ इनका लेके
अच्छा,
अपने गाड़ी में रख ली है, और मैं उसको सुनता रहता हूँ और आलमगीर को याद करते रहता हूँ।
अल्लाह ताला इनको
बहुत सी खुशियाँ दे, सेहत दे, और हम इनको हमेशा इसी तरह सुनते रहें।
आमीन। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके इस प्रोग्राम में आने का। चाहे कॉलर हम और ले लें, साजिद हमदुल्ला साहब है ये। हमदुल्ला साहब जी, वालेकुम सलाम, कहाँ से भैया फोन कर रहे हैं?
जी अहमदुल्ला बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से।
जी जी जी,
रावलपिंडी से।
जल्दी से अगर पूछ लें अपना सवाल आप आलमगीर से, क्या पूछ रहे
हैं? जल्दी, आपने अभी तो जल्दी कह दिया, काफी देर हो गया मुझे वेट किया।
हाँ तो कोई बात नहीं, आलमगीर आलमगीर से बात करने के लिए तो वेट करना पड़ता है, ऐसा आदमी थोड़ी है कोई हमारे साथ।
चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, आलमगीर साहब।
वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं पिंडी में? वाह वाह माशाल्लाह।
जी जी पिंडी में। आपने सर करिए था?
मैं पिंडी में ना 6 महीने रहा हूँ, एक प्रोग्राम मैंने किया था पिकनिक के नाम से, वो पिंडी पीटीवी से होता था। वहाँ मैं कभी मंगला डैम, कभी मैं मरी, कभी कहीं ना कहीं जाके वो वहाँ बहुत लड़के लड़कियाँ होते थे, वहाँ मैं पिकनिक करते थे, तो उसमें मैं गाने सुनाता था। तो वो एक पिकनिक के नाम से पिंडी से मैंने किया था प्रोग्राम।
अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हैं निमी है भावलपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम निमी।
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका?
बस ठीक ठाक, प्रोग्राम का वक्त बदल गया तो आपने आना ही छोड़ दिया, लेकिन वक्त थोड़ा है तो बाद में।
अब आऊंगी।
अच्छा अब आएंगी आप, चलिए तो चलिए। हाँ, जल्दी से आलमगीर से बात कीजिए।
मैं ये कह रही हूँ कि भाईजन को, खालिद भाई को लाके तो आपने और भी प्रोग्राम में चांद 10
लगा दिए।
बहुत मुझे पसंद,
बांटिए चांद बांटिए। मुझे बताइए आलमगीर कितने चांद है और खालिद साहब कितने चांद?
वो तो है ही है ना, सुपर है वो तो।
अच्छा,
चांदों के भी सुपर है
तो।
और इनका एक गाना है ना, ये शाम और तेरा नाम, तो ये इनसे कहे हमें जरूर सुना दे।
ठीक
है, सुना दूंगा जरूर।
और ये वैसे के वैसे रहे जो 30 साल पहले थे, वो अभी भी वैसे ही हैं।
बिल्कुल,
स्मार्टनेस बहुत है,
हरकतें भी वैसी हैं, चलते कूदते भी रहते हैं,
हर वक्त ये हंसते भी रहते हैं, ये बहुत इनकी
खुश कर दिया आपने।
खालिद भाई भी और ये भी।
सही बात है, दोनों बहुत प्यारे इंसान है।
अल्लाह इनको खुश रखे और इनको सेहत दे।
थैंक यू।
उम्र लंबी करे।
निमी हमारी बहुत प्यारी कॉलर हैं और हमेशा ये बड़ी मोहब्बत से जिन लोगों को पसंद करती हैं सिर्फ उनके प्रोग्राम में आती हैं। वैसे याद रखिएगा आलमगीर, आप पसंद है तो आइए।
नहीं, अब देखिएगा आऊंगी मैं, यकीन करें मैं 9 बजे सो जाती हूँ।
अच्छा,
आप यकीन माने।
अच्छा चलिए चलिए, शुक्रिया
आपका, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत दे, उम्र दे और आपकी परेशानियां दूर करे। अल्लाह हाफिज।
जी खुदा हाफिज। और कसूर से हमारे साथ है साजिद। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। साजिद साहब
जी मैडम, बहुत अस्सलाम वालेकुम मैडम।
वालेकुम सलाम।
पहले तो आपको, उसके बाद जहांगीर साहब को, और उसके बाद जनाब खालिद हमीद साहब को, पत्तों के खूबसूरत फूल और साजिद अरशाद का और पत्तू के तमाम अहबाब की तरफ से गुलाब के फूलों का गुलदस्ता रहेगा।
बहुत खूबसूरत फूल है, बहुत शुक्रिया जी।
पत्तों की फूलों का शहर है, तो आलमगीर साहब को और खालिद हमीद साहब को तो मैं दे ही रहा हूँ, और आपके गले में तो मैं माला डाल रहा हूँ, इतना अच्छा प्रोग्राम पेश कर लेते
हैं।
और मेरा सवाल रहेगा जनाब आलमगीर भाई से
जी,
कि इनका एक गाना था ये शाम और तेरा नाम, दोनों कितने मिलते जुलते हैं, बड़ा अच्छा गाना था। गाना एक तो गुनगुना दें।
हाँ,
से गुजारिश
ये शाम और तेरा नाम, दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा बस तुझको शाम कहूंगा, ये शाम और तेरा नाम।
वाह वाह, दोनों की फरमाइश यही थी जो आपने पूरी कर दी।
हाँ।
अच्छा आप कहाँ इस वक्त? जॉर्जिया में, अटलांटा में?
جی اٹلانٹا میں.
اچھا تو اب کیا پروگرام ہے, کب جا رہے ہیں پاکستان دوبارہ؟ کیا
ان شاء اللہ میں ابھی ٹرانسپلانٹ ہو جائے ایک دو مہینے میں تو پھر, اور وہ جو فلم تو بن رہی ہے نا وہ تو ظاہر ہے اس وقت ان کو میرا مجھے نہیں چاہیے, ان کو چاہیے ہوگا کم سے کم ابھی چار پانچ مہینے کے بعد کہ میں جاؤں گا, پھر وہ میرے جو گانے ہیں اس کو دوبارہ ریکارڈ کروں گا.
اچھا
پھر وہ ظاہر ہے فواد اس پہ اس کو ایکٹنگ کرے گا.
فواد 14 سال کے کیسے بنیں گے؟
مجھے تو جانا ہوگا.
عالمگیر فواد 14 سال کے کیسے بنیں گے, یہ ہے سوال.
وہ فواد کو بنائے گا, بلکہ فواد کا شکل بھی میرے سے ملائے گا جیسا میرا شکل تھا.
اچھا
وہ ابھی تو وہ میک اپ وغیرہ وہاں پاکستان میں نہیں ہے, اب ہالی ووڈ میں ہے, تو ان لوگ بندوبست کر رہے ہیں کہ وہ ہالی ووڈ سے وہ سب میک اپ لائیں گے اور فواد کو بالکل میرا شکل بنائیں گے.
لیکن میری ایک فرمائش آپ پہنچا دیجیے, وعدہ کریں ان لوگوں تک, وہ یہ ہے کہ عالمگیر کو ضرور لائیں اس میں.
نہیں میں تو شروع میں ہی میں ہوں گا.
اچھا
وہ دکھائیں گے کہ آج کا عالمگیر ہے, تو میں پرفارم کر رہا ہوں, لوگ چیخ رہے ہیں یہ وہ ہو رہا ہے, تو ایک دم سے ظاہر میرا طبیعت خراب ہے, تو دکھائیں گے کہ میں تھوڑا سا میں رک گیا یا میں تو اسٹیج پہ تھوڑا سا گرنے لگا ہوں, تو سب خاموش ہو جاتے ہیں, پھر وہ بینڈ جو ہے وہ بھی چپ ہو جاتے ہیں, پھر اس کے کیا ہو گیا عالمگیر کو, پھر وہ ڈرمر پیٹنا شروع کرتا ہے, پھر پورا بینڈ بجانا شروع کرتا ہے, لوگ چیخنا شروع کرتے ہیں, میں پھر اٹھ جاتا ہوں, پھر گانا شروع کرتا ہوں, وہاں سے فلیش بیک ہوتا ہے 10 سال کا عالمگیر ڈھاکہ میں.
اچھا یہ ویسے جی شروع ہے نا, اصل میں عالمگیر وہی ہیں, یہ آپ کی پرسنالٹی ہے, آپ کو کھڑا ہونا آتا ہے نا ہمیشہ, کھڑے آپ کھڑے آپ کو کوئی گرا نہیں سکتا, مطلب میرا یہ پورا یقین ہے کہ آپ
پھر اٹھ جانا ہے مجھے, بالکل شروع ہو جانا,
اٹھ جانا نہیں آپ کھڑے ہیں اپنے پیروں پہ. اچھا بنو سے حافظ جاوید صاحب, جی حافظ جاوید ذرا چند منٹ ہیں جلدی سے کچھ پوچھ لیں.
جی میں عالمگیر صاحب کو اور خالد حامد صاحب کو دعا و سلام پیش کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ میں حافظ قرآن ہوں, انشاءاللہ عالمگیر صاحب کی زیارت کے لیے میں دعا گو رہوں گا اور ختم قرآن بھی ان کے لیے کروں گا.
شکریہ شکریہ, تھینک یو سو مچ, ارے آپ کا کتنی اچھی بات آپ نے کی ہے,
بہت شکریہ.
آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے میں یقین مانے میں ٹکا ہوا ہوں آج تک, میرا ماشاء اللہ صحت اتنا ابھی تک صحیح ہے, کوئی کہہ نہیں سکتا مجھے کچھ ہوا ہے, کہ
یہ تو صحیح ہے,
یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے.
بالکل صحیح. اچھا حافظ
میرا یہ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور خالد حمید صاحب کو اور میری بہن کو اللہ صحیح اور سلامت رکھے.
بہت شکریہ حافظ جاوید صاحب. اور چونکہ اب صرف چند منٹ باقی ہیں, میں چاہتی ہوں اتنے پیار سے لوگ آئے, اتنی ساری باتیں کی, عالمگیر کوئی ایک گیت جو آپ سمجھتے ہوں آپ ان لوگوں کو ہمارے سننے والوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں. جی
میں نے تمہاری گاگر سے کبھی پانی پیا تھا, پیاسا تھا میں, یاد کرو سن لو ذرا, من نا 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 تھی وہ دن, یاد کرو یہ تیرے کاجل کا رنگ ہوا تھا میری آنکھوں کے سنگ, گوری تم وہ دن یاد کرو, گوری تم وہ دن یاد کرو.
واہ بہت خوب, یہ تو آپ کا ایک سگنیچر قسم جو ہوتی ہے نا ٹیون, یہ تھی آپ کی. بہت مزہ آیا عالمگیر, اور جب بھی آپ آتے ہیں اتنا خوشی ہوتی ہے, بہت اچھا لگتا ہے, ایسا لگتا ہے دوبارہ ہم اپنے ماضی میں پہنچ گئے, وہی عالمگیر جو ٹیلی ویژن پہ بے شک آپ کو شلوار قمیض پہنا دیں یا جینز میں ہوں یا کچھ بھی پہنے ہوں, عالمگیر عالمگیر رہتے ہیں ہمیشہ. تو آنے کا شکریہ پروگرام میں, اور امید ہے کہ جلدی آپ دوبارہ آئیں گے, ہم آپ کی فلم بھی دیکھیں گے جلدی. اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ ہمارے اس پروگرام کے انجینئر تھے مارٹن کرسیس اور لینس ریمکس, ہمارے پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل اور اسفر امام, مہمان آپ سب کے چاہیے تھے بہت پیارے عالمگیر. عالمگیر آپ کو خدا حافظ.
خدا حافظ. خدا حافظ.
اور اپنے تمام سننے والوں کو بھی انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اور نئی کہانیوں کے ساتھ اور نئے پروگرام کے ساتھ ہمیں کہانیاں بھیجتے رہیے, خط لکھتے رہیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.